अध्याय 16 मुद्रा विनिमय और साहूकारी। प्राचीन भारत में मुद्रा विनिमय भूमिका। पूरा पाषाण युग में मानव शिकार करके और आहार संचय करके अपना निर्वाह करता था। उस समय कबीले एक दूसरे के शत्रु थे, अतः वस्तुओं का विनिमय नहीं होता था। परंतु कुछ समय बाद कबीलों को अपनी वस्तुएं बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई। पहले इसके लिए उन्होंने वस्तु विनिमय की प्रणाली अपनाई। कुछ समय बाद वे वस्तुएं जिनका प्रयोग सभी करते थे विनिमय का साधन बन गई। जैसे कि ऋग्वेद के एक सूक्त में इंद्र की मूर्ति का मूल्य गायों में निश्चित किया गया। सैनिक लोग घोड़ों वस्तुओं का मूल्य निश्चित करते थे और शिकारी पशुओं की खालों में। परंतु गाय घोड़े खाल सभी एक प्रकार के ना थे और उनका मूल्य एक नहीं हो सकता था। फिर किसी छोटी वस्तु खरीदने के लिए पूरी गाय या पूरा घोड़ा देना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार ये विनिमय के साधन पूर्णतः सफल नहीं हुए। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए धातु का प्रयोग विनिमय के लिए किया जाने लगा। सोने चांदी ताबे का ढेर या सलाखें इस काम में लाई जाने लगी। प्रारंभ में व्यापार वस्तु विनिमय से प्रारंभ हुआ, परंतु वस्तु विनिमय तभी सफल हो सकता है जब खरीदने व बेचने वाले दोनों व्यक्तियों को उन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता हो जो उन दोनों के पास हैं। इसलिए किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसे सब लोग स्वीकार कर लें। इस प्रकार मुद्राओं का आविष्कार हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में 1200 से अधिक मुहरे तो मोहनजोदड़ो में ही मिली हैं और सैकड़ों मुहरे अन्य स्थानों पर मिली हैं। इससे यह संभावना होती है कि इनका प्रयोग विनिमय के साधन के रूप में किया जाता होगा। संभवतः मिट्टी के त्रिभुज भी विनिमय के साधन के रूप में काम में लाए जाते थे। ऐसे मिट्टी के पके हुए अनेक त्रिभुज नलियों में मिले हैं। ऐसा इसलिए संभव है कि कुछ अन्य देशों में पत्थर के टुकड़े विनिमय का साधन थे। संभव है सोना चांदी तांबे के ढेर या सलाखे भी इस सभ्यता में विनिमय के साधन रहे हों। विभिन्न कालों में मुद्रा विनिमय। नंबर 1, वैदिक या वेदोत्तर काल। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, किंतु वे कृषि भी करते थे। किसान खेती के लिए अधिक पशु और योद्धा लूट में अधिक पशु पाने के लिए प्रार्थना करते थे, इसलिए उनके दैनिक कार्यकलापों में पशु विनिमय का साधन बन गए। वस्तु विनिमय तो होता ही होगा, परंतु संभवतः विनिमय के लिए सोना चांदी और तांबे के सिक्के भी काम में लाए जाने लगे। उदाहरण के लिए निष्क प्रारंभ में सोने का हार था, परंतु बाद में इसे सिक्के के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। ऋग्वेद में एक प्रसंग में लिखा है कि एक गायक को 100 निष्क व 100 घोड़े पुरस्कार के रूप में मिले। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में अनेक ग्रंथों में मिलता है। वैदिक साहित्य में मना का भी सोने के सिक्के के रूप में प्रयोग हुआ है। वैदिक काल में चांदी के सिक्के रई का भी उल्लेख मिलता है। संभवतः सोने के ढेर हिरण्य पिंड का भी विनिमय के लिए प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में निष्क की तोल का उल्लेख नहीं है, किंतु मनु और विष्णु के अनुसार निष्क की तोल 4 स्वर्णों की तोल के बराबर होती थी और 1 स्वर्ण 320 रत्ती के बराबर होता था। शतमान की तोल 100 रत्ती होती थी, अर्ध शतमान बराबर आधा एक शतमान का, पाद शतमान बराबर चौथाई शतमान का, पदार्थ शतमान बराबर षण कोष्टक में शतमान का 8वां भाग के भी सिक्के होते थे। पाणिनी मनु और याज्ञवल्क ने भी शतमान का उल्लेख किया है। रामायण काल में वस्तु विनिमय की पद्धति विद्यमान थी, इसके लिए इस ग्रंथ में निष्क्रिय शब्द प्रयुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र वशिष्ठ की प्रसिद्ध गाय के लिए साधारण 100,000 गाय देने को उद्यत थे। 100,000 गायों के बदले में सुनह सेब को उसके माता पिता से खरीदा गया था। इस काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध मुद्रा निष्क थी। नंबर 2, 600 ईस्वी पूर्व से मौर्य काल तक। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में निष्क स्वर्ण कांस पाद मांसक काकड़ी और करसापण नाम के सिक्कों का उल्लेख मिलता है, परंतु इनका मूल्य सब प्रदेशों में एक ना था। बिना पिटक से हमें ज्ञात होता है कि बिंदुसार के राजगृह में एक मांसक एक पाद के बराबर था। A.L. बासम के अनुसार आयताकार या वृत्ताकार धातु के टुकड़ों का प्रयोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। इनकी निश्चित तौल होती थी और इन पर अनेक प्रकार के चिन्ह जैसे कि सूर्य पर्वत वृक्ष की शाखाएं मानव खरगोश कुत्ता बिच्छू सांप आदि की आकृतियां ठप्पा मारकर खोदी जाती थी। इन्हें आहा सिक्के कहते हैं। संभवतः ये आकृतियां धार्मिक क्रियाओं में पूज्य समझी जाती थी। रैसन आदि विद्वानों ने आहा सिक्कों पर विदेशी प्रभाव दिखलाने का प्रयत्न किया था। उनके अनुसार ईरानी सम्राट दारा के सिगलोई नामक सिक्के ईसा पूर्व 500 से 331 तक प्रचलित थे। इन पर भी उसी प्रकार के चिन्ह हैं जैसे कि भारतीय आहा सिक्कों पर हैं, और उन पर भी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अक्षर खुदे हैं। सिगलोई और भारतीय आहा सिक्के बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, परंतु दुर्गा प्रसाद और डीडी कौशाम्बी रैप्सन के उक्त मत से सहमत नहीं है। तक्षशिला की सबसे निचले अस्त्रों पर जो चांदी के सिक्के मिले हैं वे तौल में 100 रत्ती, कोष्टक में 180 ग्रेन थे, और ईरानी सिगलोई तौल में 36.45 ग्रेन थी। अगर इसकी दुनी सिगलोई 72.90 ग्रेन को तक्षशिला के चांदी के सिक्के माने तो भी ठीक नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष तर्क संगत प्रतीत होता है कि तक्षशिला में मिले ये सिक्के पूर्णतया भारतीय थे और संभवतः ये शतमान थे। इन पर विदेशी प्रभाव की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। थाउचर के अनुसार आहत सिक्कों पर हाथी और सांड यह प्रकट करते हैं कि मौर्य वंश का बौद्ध धर्म से घनिष्ठ संबंध था। जंगलों में जो वृक्ष दिखलाया गया है वह संबोधि का प्रतीक है और मेहराब बौद्ध की स्तूपों की संकल्पना को प्रकट करती है। कौटिल्य ने प्रमुख रूप से दो सिक्कों का उल्लेख किया है, पड़ और मासक। पड़ चांदी का सिक्का था और उसके आधे, चौथाई और आठवें भाग के सिक्कों का भी प्रचलन था। मासक तांबे का सिक्का था, उसके भी आधे, चौथाई और आठवें भाग के सिक्के ढलते थे। तांबे के सिक्के का चौथाई भाग काकड़ी कहलाता था। अधिकतर व्यापार चांदी के सिक्के पड़ के माध्यम से होता था। अधिकतर सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी पड़ों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र से हमें यह भी ज्ञात होता है कि सिक्के ढलने के लिए सरकारी टकसाल थी और अधिकारी उसका निरीक्षण करते थे। इस काल में सोने के सिक्के का प्रचलन कम था, परंतु इस काल की अर्थव्यवस्था में व्यापार, जुर्माने, भूमिकर आदि में सिक्कों का खूब प्रचलन था। नंबर 3, लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। मनु लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी ने सिक्के की निम्नलिखित तालिका दी है। 5 रत्ती बराबर 1 मांस, 16 मांस बराबर 1 स्वर्ण, 4 स्वर्ण बराबर 1 निष्क या पल, 10 निष्क या पल बराबर 1 धरण। यूनानी हिंद यूनानी राजाओं का द्रैक में सिक्का वजन में 67.62 ग्रेन होता था और इसका छठा भाग जो ओल कहलाता था 11.2 ग्रेन होता था। इसी आधार पर उन्होंने अफगानिस्तान में अपने सिक्के चलाए, किंतु भारत में जो सिक्के उन्होंने चलाए उनका वजन 152 ग्रेन और 38 ग्रेन था। उनके सोने के सिक्के बहुत कम मिले हैं। मिनांडर और अपोलो डोटस के सिक्के भड़ौस तक चलते थे। पश्चिम भारत के सख्त शासकों ने इन्हीं के अनुरूप अपने सिक्के चलाए। सबसे अधिक प्रचलन 3 द्रैक का सिक्का था। संभवतः इन्हीं सिक्कों के माध्यम से पश्चिमी देशों से भारत का व्यापार होता था। दक्षिण भारत के सातवाहन शासकों ने शीशे और खराब चांदी के सिक्के चलाए। गुजरात, मालवा और पश्चिमी दक्षिणापथ के शकों ने चांदी के अच्छे किस्म के सिक्के चलाए। पेरिप्लस में लिखा है कि दक्षिणापथ में ईरानियों के सोने के और शकों के सिक्कों का प्रचलन था। इन दोनों का आपस में क्या अनुपात था यह हमें मालूम नहीं है। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के नियमित रूप से कुषाण राजाओं ने चलाए। बिम कर्दाफिस की 3-4 पीढ़ी बाद तक कुषाणों के सिक्के चलते रहे। इसका यह अर्थ है कि इस समय भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी थी। उत्तर भारत में रोम के सिक्के भी दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक संख्या में मिले हैं। संभवतः इसका यह कारण था कि दक्षिण में उन वस्तुओं का आयात किया जाता था जिनकी स्थानीय खपत थी, किंतु उत्तर भारत का व्यापार बहुत कुछ पारगम व्यापार था। उत्तर भारत का व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा मिस्र से भी होता था, इसलिए रोम के सिक्के उत्तरी भारत में अधिक संख्या में नहीं मिले हैं। भारत के कुछ यूनानी शासकों और शकों ने चांदी के सिक्के चलाए थे, किंतु कुषाणों के चांदी के कोई सिक्के नहीं मिले हैं। संभवतः यूनानियों और शकों के चांदी के सिक्के बिना किसी रोक टोक के कुषाण साम्राज्य में चलते थे, इसलिए कुषाणों को चांदी के सिक्के चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। कुषाणों के सिक्के का वजन औसतन 123.2 ग्रेन होता था, परंतु यूनानी 700 के सिक्कों का वजन में 134.4 ग्रेन होता था। कुषाणों के अधिकतर सिक्के 1 दिनार, 2 दिनार और 4.5 दिनार के मिले हैं। वासुदेव प्रथम के बाद के कुषाण शासकों के सोने के सिक्कों में खोट अधिक है। छोटे पैमाने का व्यापार इस काल में वस्तु विनिमय या कुषाणों के ताबों के सिक्कों से होता था। इन ताबे के सिक्कों का वजन 240 से 260 ग्रेन होता था। नंबर 4, गुप्त काल, लगभग 300 ईस्वी से 551 ईस्वी। गुप्त सम्राट के सोने और चांदी के सिक्कों के अनेक संचय मिले हैं। इसका कारण यह है कि सिक्कों का उपयोग मनुष्य धन संग्रह करने के लिए भी करता है, क्योंकि इनके शीघ्र ही नष्ट होने की संभावना नहीं होती। गुप्त सम्राट के सिक्कों के अभी तक 16 संचय मिले हैं। इनके अतिरिक्त जो गुप्त सम्राटों के सिक्के मिले थे, उन्हें पाने वालों ने पिघलाकर सोना बना लिया था। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कालीघाट से प्राप्त सिक्कों के संचय का सोना बना लिया था। मनुष्य धन का संग्रह इसलिए करता था कि वह दुर्भिक्ष, सूखा, युद्ध आदि आपत्तियों के समय संग्रहित धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। प्रारंभिक गुप्त सम्राटों के सिक्के कुषाण सम्राटों के सिक्के के अनुरूप है। समुद्रगुप्त के सिक्कों का वजन कुषाण सम्राटों के तीसरी सती ईस्वी के सिक्कों के समान है। इसका वजन 118 से 123 ग्रेन है। कनिंघम के अनुसार कुषाण सम्राटों के सिक्के वजन में 123 ग्रेन होते थे, जिसमें 107 ग्रेन सोना और 16 ग्रेन खोट होता था। परंतु यस्के मैटी का मत है कि कुषाण सम्राटों के सिक्कों में सोने की मात्रा इससे अधिक थी। स्कंदगुप्त के राज्यकाल के अंत की ओर सोने के सिक्के का वजन 144 से 146 ग्रेन हो गया, किंतु इनमें सोने की मात्रा केवल 70 ग्रेन रह गई। इन राजाओं ने संभवतः भारतीय परंपरा को फिर से चालू किया, क्योंकि मनु के अनुसार सुवर्ण नाम के भारतीय सिक्के का वजन 80 रत्ती या 144 ग्रेन होता था, परंतु सोने की मात्रा कम होने से यह स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि हूणों तथा अन्य शत्रुओं ने साम्राज्य पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए थे। कुषाण और गुप्त सम्राटों ने सोने के सिक्के चलाए, परंतु उनके बाद के उत्तर भारत के राजाओं ने बहुत कम सोने के सिक्के चलाए। इन सोने के सिक्कों का मनुष्य ने संग्रह प्रारंभ कर दिया। कुषाणों और गुप्त सम्राटों के राज्यकाल में भारत का व्यापार चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए इन सम्राटों ने सोने के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में सबसे पहले गुप्त सम्राट ने चांदी के सिक्के चलाए, क्योंकि उसने शकों को हराकर पश्चिमी भारत पर अधिकार किया था और वहां शकों के राज्यकाल से ही चांदी के सिक्के चलते थे। इसलिए चांदी के सिक्के आकृति और वजन में शकों के सिक्कों के अनुरूप हैं। कुमारगुप्त प्रथम के चांदी के सिक्के दो प्रकार के हैं और बड़ी संख्या में मिले हैं। एक प्रकार के सिक्के पश्चिमी भारत में और दूसरे प्रकार के मध्य देश में चलते थे। कुमारगुप्त प्रथम के कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिनमें नीचे तांबा है और ऊपर से चांदी का खोल चढ़ा है। स्मिथ का मत है कि पिछले गुप्त सम्राटों ने इस प्रकार के सिक्के इसलिए चलाए क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में चांदी ना थी। स्कंदगुप्त ने दो प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए और बुद्धगुप्त ने लगभग 475 से 495 ईस्वी में भी चांदी के सिक्के जारी किए। गुप्त सम्राटों ने तांबे के सिक्के भी चलाए। आर डी बनर्जी ने अपने ग्रंथ में समुद्रगुप्त के दो तांबे के सिक्के का उल्लेख किया है, वे अब उपलब्ध नहीं है। रामगुप्त के 6 तांबे के सिक्के विदिशा के निकट मिले थे। परमेश्वरी लाल गुप्त के अनुसार ये 6 सिक्के रामगुप्त के हैं, किंतु अल्तेकर और एके नारायण के अनुसार इनमें से केवल 2 रामगुप्त के हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल के 9 प्रकार के तांबे के सिक्के उपलब्ध हैं, परंतु कुमारगुप्त प्रथम के तांबे के सिक्के बहुत कम मिले हैं। कुमारगुप्त के बाद के कोई तांबे के सिक्के नहीं मिले हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो तांबे के सिक्कों का कोई संग्रह नहीं करता था, दूसरे तांबे के सिक्के में जंग लगने से वे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वे अब उपलब्ध नहीं है। नारद और बृहस्पति के सिक्कों की तालिकाओं से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि गुप्त काल में सिक्कों का प्रचलन बड़े पैमाने पर विद्यमान था। नारद की तालिका निम्नलिखित है। 48 काकड़ी बराबर 1 मास या 1 पड़, 20 मास या पड़ बराबर चांदी का 1 करसापड़ या अंडिका, 4 करसापड़ या अंडिका बराबर 1 घानक, 12 घानक या 48 चांदी के करसापण बराबर एक स्वर्ण। बृहस्पति की तालिका निम्नलिखित है। तांबे का एक करसापण बराबर एक पड़, 4 करसापण बराबर एक घानक, 12 घानक या 48 करसापण बराबर एक स्वर्ण और 2 स्वर्ण या दीनार बराबर एक निष्क। गुप्त काल में चांदी का सिक्का लगभग 58 ग्रेन होता था और सोने का सिक्का 123 या 124 ग्रेन। बृहस्पति और नारद दोनों के अनुसार 58 × 48 बराबर 2784 ग्रेन चांदी बराबर 124 ग्रेन सोना, अर्थात 1 ग्रेन सोना बराबर 22/7/16 या लगभग 22/1/2 ग्रेन चांदी। ये बृहस्पति और नारद की तालिकाएं गुप्त काल के सोने और चांदी के सिक्के के अनुरूप नहीं है, क्योंकि गुप्त काल में 16 × 58 बराबर 928 ग्रेन चांदी बराबर 124 ग्रेन सोने के, अर्थात सोने के लगभग 8 ग्रेन चांदी बराबर 1 ग्रेन सोना। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मृतिकारों ने सिक्कों का वर्णन नहीं किया है, उन्होंने सुनारे के बटहरे का वर्णन किया है। उस समय घन की कीमत विनिमय मूल्य बहुत अधिक थी। 2, 3 या 4 दिनार में एक व्यक्ति काफी बड़ा भूमिखंड एक कुल्यवाप खरीद सकता था। 10 या 12 दिनार अक्षय निवी के रूप में जमा कर दानी उसके ब्याज से भिखारियों के एक निवास स्थान का खर्चा चला सकता था। 2 अवसरों पर दानियों ने 25 और 16 दिनार अक्षय निवी के रूप में दान में दिए। उनके ब्याज से भिक्षुओं को भोजन और मंदिरों में दीपक जलाया जाता था। चांदी के सिक्के का विनिमय मूल्य भी काफी ऊंचा था। वैग्राम ताम्रलेख से हमें ज्ञात होता है कि चांदी के 16 सिक्के सोने के एक सिक्के के बराबर थे, इसलिए सोने और चांदी के सिक्के दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने में काम में नहीं आते थे। वे तो भूमि आदि खरीदने या दान देने में खर्च किए जाते थे। संभवतः दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदने में तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। कौड़ी भी इस काम में आती थी। वस्तु विनिमय पद्धति विद्यमान होने के कारण छोटे सिक्कों की आवश्यकता नहीं होती होगी। संभवतः गुप्त सम्राटों में सबसे पहले सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। इन सिक्कों में एक और चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृति उत्कीर्ण है और एक देवी की आकृति पीछे की ओर खुदी है और उसके नीचे लिच्छवा शब्द उत्कीर्ण है। कुछ विद्वानों के अनुसार इन सिक्कों को समुद्रगुप्त ने स्मरणात्मक सिक्कों के रूप में चलाया था, क्योंकि इस विवाह का गुप्त वंश के उत्कर्ष में बहुत महत्व था। परंतु स्मित और मैठी का यही मत है कि ये सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। नंबर 5, गुप्तोत्तर काल 550 से 700 ईस्वी। गुप्तोत्तर काल की मुद्रा व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद अनेक राज्य स्थापित हो गए, अतः उनके शासकों ने अपने राज्य में अपने अपने सिक्के चलाए, इसलिए उत्तर भारत में सर्वत्र एक मुद्रा प्रणाली न रह सकी। जबकि गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र एक प्रकार के तथा एक मूल्य के सिक्के चलते थे। कश्मीर, थानेश्वर और बंगाल आदि के शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। दूसरी विशेषता यह थी कि इन शासकों ने गुप्त सिक्कों के अनुरूप सिक्के चलाने का प्रयत्न किया, परंतु वे रूप और शुद्धता में गुप्त सिक्कों की अपेक्षा बहुत निकृष्ट हैं। तीसरी विशेषता यह है कि सोने व चांदी के सिक्के केवल बड़े व्यापार के प्रयोग में लाए जाने लगे, छोटा व्यापार कौड़ियों से होता रहा। भूमिखंड खरीदने में दिनारों का प्रयोग पहले की भांति होता रहा। ईसा की 6वीं और 7वीं शताब्दी के अनेक सोने के सिक्के उत्तर भारत में मिले हैं। डॉक्टर हार्नले को एक सिक्का हर्ष का मिला था, जिस पर हर्ष देव खुदा है। बंगाल में जयनाग, शशांग और समाचार देव के भी सिक्के सोने के मिले हैं। शशांग के कुछ सिक्के तांबे के थे, जिन पर चांदी का खोल चढ़ा था और उस पर सोने का पानी था। शशांग ने चांदी के कोई सिक्के नहीं चलाए, किंतु देश के अन्य भागों में इस काल में भी चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन के चांदी के सिक्के मिले हैं। प्रभाकर वर्धन के सिक्कों पर प्रतापशील और हर्षवर्धन के सिक्के पर शिलादित्य शब्द खुदे हैं। बाढ़ ने हर्षरित में प्रभाकर वर्धन का उपनाम प्रतापशील दिया है और हांसांग ने हर्ष का नाम शिलादित्य दिया है। 6वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक प्रवर सेन ने सोने और चांदी दोनों के सिक्के चलाए। इस काल में तांबे के सिक्के भी चलाए गए। कश्मीर में तोरमाड़ के तांबे के सिक्के मिले हैं। उड़ीसा में जो तांबे के सिक्के मिले हैं उन्हें पुरी का कुषाण सिक्के कहा जाता है। क्योंकि वे कुषाण के ताबे के सिक्कों के अनुरूप हैं। इस काल में कौड़ियों का सिक्कों के रूप में प्रयोग किया जाता था। हेनसांग के अनुसार इस काल में भी वस्तु विनिमय पद्धति विद्यमान थी। नंबर 6 पूर्व मध्य काल। इस काल के शासकों ने चांदी और ताबे की मिश्रित धातु के सिक्के चलाए, परंतु उनमें ना तो वजन एक जैसा है और ना शुद्धता। सेन शासकों के ताम्र लेखों से ज्ञात होता है कि भूमिकर कपर्दक पुराणों में निश्चय किया जाता था। कपर्दक का अर्थ कौड़ी है और पुराण चांदी का सिक्का था। 80 कौड़ी बराबर थी पड़ के या ताबे के कसा पड़ के या 16 पड़ या 1228 कौड़ी बराबर हुई एक पुराण के। डाहल के कलचुरी वंश के शासक गांगे देव विक्रमादित्य लगभग 1015 से 1141 ईस्वी ने गुप्त सम्राटों के सिक्के के अनुरूप शीशे के सिक्के चलाए। जयजाक मुक्ति के चंदेल शासकों ने गांगदेव के सिक्कों की नकल की। इनके पृष्ठ भाग में बैठी हुई लक्ष्मी की आकृति बनी है। चहमान शासकों ने सांड और घुड़सवार के चांदी के सिक्के चलाए। ये उत्तर पश्चिमी भारत के शाही वंश के शासकों के चांदी के सिक्कों के नकल थे। उत्तर भारत के तुर्क शासकों ने भी प्रारंभ में इन्हीं के अनुरूप सिक्के चलाए। कश्मीर के इस काल के शासकों ने ताबे के भी सिक्के चलाए। दक्षिण भारत के चालुक्य शासकों ने जो सोने के सिक्के चलाए वे पद्मटंग कहलाते हैं। उन पर सुअर की आकृति है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रचलन वराह नाम के सिक्के का था, क्योंकि इस पर सुअर की आकृति बनी होती थी। उन्हें सोने का गद्यान भी कहा जाता था। उनका वजन 48 रत्ती होता था। इसी सिक्के को कन्नड़ भाषा में पोन या हुन, संस्कृत में निस्क या तमिल में कुलुंज या मायू कहा जाता था। यूरोपीय लेखकों ने वराह को पगोड़ा लिखा है। ताबे का सिक्का दक्षिण भारत में कासु कहलाता था। चोल शासकों के सिक्कों पर तीन चिन्ह हैं, मछली, धनुष और चीता। संभवतः ये तीनों आकृतियां चोल, पांडी और केरल राज्यों के राष्ट्रीय चिन्ह थे, जिन पर अधिकार करके चोल शासकों ने इस प्रकार के सिक्के चलाए। पांड्य शासकों ने मछली की आकृति वाले सोने के सिक्के चलाए। विनिमय के अन्य साधन। कभी कभी आभूषणों व चावलों का भी विनिमय के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता। कश्मीर में चावल वेतन देने में भी विनिमय का साधन माना जाता था। कौड़ियां तो विनिमय का साधन प्राचीन काल से ही थी। इस काल में साधारणतः कौड़ियों का मूल्य निम्नलिखित तालिका से आंका जा सकता है। 20 कौड़ी बराबर एक काकड़ी, 4 काकड़ी बराबर एक ताबे का पड़, 16 पड़ बराबर एक चांदी का द्रम। परंतु यह दरें परिस्थितियां बदलने पर बदलती रहती थी। वस्तु विनिमय। प्राचीन भारत में वस्तु विनिमय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गाँव में विनिमय का प्रमुख साधन यही था। दूर दूर के व्यापारी भी मंडियों में वस्तु विनिमय करके व्यापार करते थे। साहूकारी। प्राचीन भारत में विभिन्न कालों के अंतर्गत साहूकारी। ऋग्वेद में ऋण का उल्लेख है, किंतु इस काल के अधिकतर व्यक्ति जुआ खेलने के कारण ऋणी हो जाते थे। ऋग्वेद में मूलधन का 1/16 या 1/18 भाग ब्याज के रूप में देने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में धन उधार देने वाले साहूकार कोष्टक में कुसुदी का स्पष्ट उल्लेख मिला है। प्राचीन बौद्ध साहित्य से स्पष्ट है कि व्यापारी लोग साहूकारों से धन उधार लेते थे। उससे व्यापार करके वे इतनी आय कर लेते थे कि ब्याज सहित वह धन साहूकार को लौटा देते थे और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर लेते थे। गौतम और मुनि दोनों ने धन कमाने के 7 प्रकारों में ऋण देकर ब्याज लेने को भी एक साधन बतलाया है। मनु के अनुसार आपातकाल में सभी वर्णों के व्यक्ति धन उधार देकर और ब्याज लेकर अपना भरण पोषण कर सकते हैं, किंतु सामान्य काल में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए ऋण देकर और ब्याज लेकर अपना निर्वाह करना निषिद्ध था। इसलिए साहूकारी का व्यवसाय अधिकतर वैश्यों और शूद्रों के हाथ में था, किंतु मनु के अनुसार सभी वर्णों के लोगों को ब्याज की दर बहुत कम रखनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जो धन व्यापार में लगाया जाए उस पर लाभ का आधा ब्याज के रूप में व्यापारी को साहूकार को दे देना चाहिए। यह धन प्रति वर्ष व्यापारी को ब्याज के रूप में साहूकार को देना चाहिए, किंतु अधिक से अधिक ब्याज मूलधन के बराबर हो सकता था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार पूंजी लगाने वाले को लाभ का 6/7 या 15/16 तक दिया जा सकता है। ऋण दो प्रकार के थे, रक्षित और प्रतिभूति रहित। मनु के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कर्जा ना चुका सके तो उसका उत्तराधिकारी रक्षित कर्जे का ही देनदार होता है। जातकों के अनुसार मुद्रिका की प्रतिभूति देकर बड़े व्यापारी सौदे हो जाते थे। यदि कोई व्यक्ति कर्जे पर ब्याज ना चुका सके तो उसकी पुत्री को दासी के रूप में कार्य करना पड़ता था। जब कोई व्यक्ति प्रतिभूति के रूप में कोई वस्तु रखकर कर्जा लेता था तो साहूकार को उस वस्तु को किसी को देने या बेचने का अधिकार नहीं होता था। ऐसी वस्तु कभी भी खोई हुई नहीं मानी जाती थी। बहुत से व्यापारी अपने बांड पर साहूकारों से धन उधार लेते थे। मनु के अनुसार चाहे रक्षित ऋण हो चाहे प्रतिभूति रहित, उसके लिए लिखित कर्जे का इकरारनामा होना जरूरी था। जब साहूकार कर्ज से मूल या ब्याज मांगता था तो उसे इकरारनामा दिखाना पड़ता था। कौटिल्य और मनु के अनुसार 15% प्रतिवर्ष ब्याज उचित है, परंतु यह ब्याज की दर रक्षित कर्जे के लिए थी। प्रतिभूति रहित ऋण के लिए जाति के अनुसार ब्याज की दर अलग अलग थी। ब्राह्मण से 24%, क्षत्रिय से 36%, वैश्य से 48% और शूद्र से 60% प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार साहूकार को जंगल वालों से 120% और सामुद्रिक नाविकों से 240% ब्याज लेना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार ब्याज मूलधन से अधिक नहीं हो सकता था, परंतु जब धन की मांग बढ़ी तो ब्याज का अनुपात भी बढ़ गया। मनु के अनुसार मूलधन और ब्याज मिलाकर कभी भी दुने से अधिक नहीं होने चाहिए, किंतु धान्य वृक्ष के मूल और फल, ऊन और वाहन की दशा में यह 5 गुना तक हो सकता है। कभी उससे अधिक नहीं लिया जा सकता जितना कि निश्चित किया गया हो। अधिक से अधिक 5 रुपए प्रति सैकड़ा प्रति माह ब्याज लिया जा सकता है। 1 वर्ष हो जाने पर साहूकार जो मासिक ब्याज ठहरा वह ले ले, इससे अधिक समय अधिक ब्याज वसूल करने के लिए ना बढ़ाए। चक्रवृद्धि, काल वृद्धि, कारित और क्यायिक ब्याज वसूल ना करे। चक्रवृद्धि ब्याज में साहूकार ब्याज पर ब्याज ले सकता था। कौटिल्य इस प्रकार का ब्याज लेने के विरुद्ध था। काल वृद्धि ऋण में नियत समय बीतने पर ब्याज में वृद्धि की जा सकती थी। कारित ऋण में प्रचलित ब्याज की दर से अधिक दर होती थी, जिसके लिए कर्जदार अपनी अधिक कठिनाइयों के कारण स्वयं सहमत हो जाता था। कायिक ऋण में शरीर से ब्याज चुकाया जाता था, जैसे कि साहूकार की सेवा करके या जिसमें साहूकार भैंस का दूध कर्जदार से वसूल करे। मनु इन 4 प्रकार के ब्याज वसूल करने के विरुद्ध था, परंतु उसके काल इसवा पूर्व 200 से 200 ईस्वी में कुछ साहूकार निश्चय ही ऐसे होंगे, तभी मनु ने इन 4 प्रकार के ब्याजों का उल्लेख किया है। जब ऋण व्यापार के लाभ की शर्त पर दिया जाता था तो उसमें ब्याज नहीं लगता था। कौटिल्य ने लिखा है कि राज्य के कल्याण के लिए राजा को ऋणों के सौदे की पूरी सुरक्षा करनी चाहिए और जो सौदे की शर्तों को पूरा ना करे उन पर राजा को जुर्माना करना चाहिए। प्रारंभ में ऋण ब्याज पर देने पर कोई प्रतिबंध ना था, किंतु ब्याज के बाद के धर्म शास्त्रों में इसे निषिद्ध घोषित कर दिया गया, क्योंकि ब्याज की दरें अत्यधिक हो गयी। गौतम और कौटिल्य के अनुसार जिस ऋण पर समय की सीमा ना हो उसे उत्तराधिकारियों को चुकाना चाहिए। संयुक्त परिवार के कल्याण के लिए जो ऋण लिया गया हो उसे चुकाने का उत्तरदायित्व परिवार के सब सदस्यों का होता है। पत्नी ने जो ऋण लिया हो उसके चुकाने का उत्तरदायी पति पर होता है। ऋण लेने वाला व्यक्ति मूलधन और ब्याज का भुगतान शारीरिक श्रम करके भी कर सकता था, परंतु मनु ने लिखा है कि यदि ऋण लेने वाला 3 उच्च वर्णों में से हो तो उसे ऋण न चुकाने के कारण दास नहीं बनाया जा सकता। अपस्तंभ ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति ऋण ना चुकाए तो साहूकार उसके घर जाकर उस पर ऋण चुकाने के लिए तकाजा कर सकता है, किंतु उसे ऋणी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। किंतु मनु कहता है कि साहूकार ऋणी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जातकों से ज्ञात होता है कि साहूकार कर्जदारों अपने एजेंडों द्वारा भी बॉन्ड दिखाकर अपना रुपया वसूल थे। अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि साहूकार छोटे छोटे ऋण को ना चुकाने पर निर्धन कर्जदार को जेल में डलवा सकता था, किंतु धनी कर्जदार के साथ वह ऐसा नहीं कर सकता था। बहुत से कर्जदार ऋण ना चुका सकने पर आत्महत्या कर लेते थे। अंगुत्तर निकाय और महाभारत दोनों में लिखा है कि जो व्यक्ति कर्जदार नहीं है वास्तव में वह सबसे अधिक सुखी है। नंबर 1, लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। गुप्त काल में ऋण से प्राप्त ब्याज को दूषित या कृष्ण धन कहा गया है। यह होते हुए भी नारद और बृहस्पति ने उधार दिए हुए धन पर ब्याज लेने के विषय में अनेक नियम दिए हैं। साहूकार और कर्जदार के बीच इकरारनामों के आधार पर लोग धन उधार लेते थे। सरकार इसमें कम से कम हस्तक्षेप करती थी, इसलिए लालची साहूकार बहुधा कर्जदारों को अनेक प्रकार से सताते थे, परंतु साधारणतः सभी व्यक्ति उन नियमों का पालन करते थे जो समाज में प्रचलित थे। नारद और बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है कि ऋण देने और उसको वसूल करने के विषय में जो नियम स्थानीय समाज में प्रचलित हों, प्रत्येक व्यक्ति को उनका पालन करना चाहिए। नारद से ज्ञात होता है कि कुछ प्रदेशों में ब्याज मूलधन के बराबर हो सकता था, किंतु अन्य प्रदेशों में यह मूलधन का 2 गुना है और 3 गुना भी हो सकता था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लाभकारी ब्याज लेने के लिए लोग व्यक्तियों, श्रेणियों और निगमों के पास अपना धन जमा करते थे। ये व्यक्ति, श्रेणियां या निगम फिर इस धन को अपने व्यवसाय में लगाते थे या दुकानदारों, व्यापारियों, शिल्पियों, किसानों आदि को ब्याज पर उधार देते थे। कुछ साहूकार रुपया उधार देकर ही अपना निर्वाह करते थे। बृहस्पति ने लिखा है कि बिना बंध या बांड के किसी साहूकार को किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देना चाहिए। बंध 4 प्रकार का हो सकता था, चल या अचल, केवल खरीद रखने के लिए या प्रयोग करने के लिए, जिससे किसी भी समय मुक्त किया जा सकता था या जो अवधि से सीमित हो। यह बंध लिखित भी हो सकता था या जिसको साक्षियों के सामने मौखिक रूप से स्वयं कर्जदार ने व्यक्त किया हो। यह आशा की जाती थी कि जमानत की चीज उसी रूप में सुरक्षित रखी जाएगी जिस रूप में कर्जा लेते समय दी गई थी, नहीं तो साहूकार को ब्याज लेने का अधिकार नहीं होता था। यदि कोई ऐसी वस्तु जमानत में दी गई है जिसका उपयोग करने का अधिकार साहूकार को दिया गया है, तो साहूकार ब्याज नहीं मांग सकता था, परंतु जब तक अवधि पूरी ना हो साहूकार को उस वस्तु को किसी को देने या बेचने का अधिकार नहीं होता था। यह भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि या अचल संपत्ति रेहन रखी हो और साहूकार उस भूमि से या अचल संपत्ति से मूलधन और ब्याज से अधिक लाभ उठा ले, तो कर्जदार को अपनी वस्तु को वापस लेने का अधिकार होता है। यदि ब्याज के कारण मूलधन दुना हो जाए या नियत अवधि बीत जाए, तो साहूकार उसे रेहन रखी वस्तु का स्वामी हो जाता है, परंतु उसे अवधि बीतने या धन दुना होने के बाद 1 पखवाड़े तक कर्जदार द्वारा मूलधन ब्याज सहित लौटाने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु बिना ब्याज सहित पूरा धन लौटाए कर्जदार अपनी रेहन रखी वस्तु वापस नहीं पा सकता था। साहूकार प्रतिष्ठित व्यक्तियों की जमानत पर भी रुपया उधार देते थे। जमानत देने वाले व्यक्तियों को 4 प्रकार की जमानत देनी होती थी। वह कर्जदार को साहूकार के सामने उपस्थित करेगा, वह प्रमाणित करता था कि कर्जदार ईमानदार व्यक्ति है, वह धोखा नहीं देगा। यदि कर्जदार धन नहीं लौटाएगा तो जमानत देने वाला व्यक्ति स्वयं वह धन लौटाएगा या कर्ज लेने वाले की चल संपत्ति कर्जे के बदले में प्रस्तुत करेगा। बृहस्पति ने यह भी लिखा है कि यदि कर्जदार धन न लौटाए तो साहूकार को जमानत देने वाले को परेशान नहीं करना चाहिए, उससे किस्तों में धन ले लेना चाहिए। चाहे सुरक्षित ऋण हो या प्रतिभूति रहित ऋण का लिखित इकरारनामा होना आवश्यक था। साहूकार को प्रत्येक भुगतान के लिए रसीद देनी चाहिए। यदि मांगने पर भी वह रसीद ना दे तो उसका शेष धन मारा जाएगा। इस काल के इतिहासकार लिखित दस्तावेजों पर पूरा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनका मत था कि जहाँ तक संभव हो मौखिक साक्ष्य भी होनी चाहिए। इसलिए नारद और बृहस्पति ने कौन व्यक्ति साक्षी हो सकते हैं इसका विस्तृत विवेचन किया है। सामान्य रूप से नारद और बृहस्पति दोनों ने ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष लिखी है, परंतु ब्याज की दर केवल सुरक्षित कर्जों के लिए थी। प्रतिभूतिहीन कर्जों के लिए नारद के अनुसार 24% प्रति वर्ष ब्राह्मणों से, 36% क्षत्रियों से, 48% वैश्यों से और खेतिहार और मजदूरों सूत्रों से 60% ब्याज लेना उचित समझा जाता था। इस काल की स्मृतियों में 6 प्रकार के कर्जों का उल्लेख मिलता है, कायिक, कालिक, चक्रवृद्धि, कारित, शिखा वृद्धि और भोग लाभ। कायिक, कालिक, चक्रवृद्धि और कारित ब्याज के ऋणों का विवेचन हम अनुस्मृति के आधार पर कर चुके हैं। शिखा वृद्धि में ब्याज प्रतिदिन वसूल किया जाता था, केवल तभी यह ब्याज बढ़ना बंद होता था जबकि कर्जदार मूलधन भी लौटा दे। इस प्रकार के ब्याज का नाम शिखा वृद्धि इसलिए पड़ा कि जिस प्रकार बाल सिर पर प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार यह ब्याज भी प्रतिदिन बढ़ता था। भोग लाभ में साहूकार गिरवी रखी हुई ब्याज का उपयोग करता था, जैसे कि कोई मकान गिरवी रखे तो साहूकार उस मकान में स्वयं रह सकता था। खेत गिरवी रखे थे, खेत की फसल साहूकार स्वयं ले लेता था। बृहस्पति के अनुसार यदि कर्जदार समय पर मूलधन ना चुका है तो साहूकार शिक्षा वृद्धि कायिक और भोग लाभ ले सकता है। नारद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को ऋण दे दे तो उसे ब्याज नहीं लेना चाहिए, किंतु यदि मांगने पर मित्र धन ना लौटाए तो उस पर 5% प्रति मास ब्याज लेना चाहिए। स्मृतिकार घास, लकड़ी, ईंट, धागा, सुरा बनाने के पदार्थ, पत्तों, हड्डियों, चमड़ा, हथियार, फूलों और फलों पर ब्याज लेने के विरुद्ध थे। गौतम और मनु का मत था कि ब्याज कभी भी मूलधन से अधिक नहीं होना चाहिए, किंतु गुप्त काल में उद्योगों और व्यापार की वृद्धि होने के कारण धन की मांग बढ़ी, इसलिए स्मृतिकारों को भी ब्याज की सीमा के विषय में नियम बदलना पड़ेगा। नारद ने लिखा है कि कुछ प्रदेश में ब्याज मूलधन का 2 गुना, 3 गुना और 8 गुना तक लिया जाता है। सोना 2 गुना, अनाज 3 गुना और द्रव पदार्थ 8 गुने बढ़ सकते हैं। स्त्री और पशु पर ब्याज उनकी संतान होने तक बढ़ सकता है। जिस ऋण की कोई काल सीमा हो वह ऋणी की संतान को चुकाना पड़ता था। कर्जदार की तीसरी पीढ़ी को केवल मूलधन देना होता था, ब्याज नहीं। यदि किसी संयुक्त व्यवसाय के लिए उस व्यवसाय के चलाने वाले ऋण लेते थे तो हर हिस्सेदार पूरे ऋण के लिए उत्तरदायी होता था, परंतु यदि कोई हिस्सेदार मर जाए तो उसका पुत्र उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य नहीं होता था। जब किसी व्यक्ति को व्यापार में घाटा हो जाए तो उसे धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार अपना ऋण चुकाने की अनुमति थी, किंतु यदि कोई धनी व्यक्ति ऋण ना चुकाए तो सरकार उससे मूलधन और ब्याज के साथ साथ मूलधन का 10% जुर्माना भी वसूल करती थी। नारद और बृहस्पति दोनों ने साहूकार को कर्जदार से मूलधन और ब्याज वसूल करने के लिए काफी छूट दी है। वह समझा बुझाकर, धोखा देकर, शक्ति का प्रयोग करके या कानूनी कार्यवाही करके अपना धन वसूल कर सकता था। कात्यायन ने लिखा है कि यदि कोई कर्जदार मूलधन और ब्याज ना चुकाए तो साहूकार उसे जबरदस्ती भरी सभा में उस समय तक बिठाए रखे जब तक वह पूरा भुगतान ना कर दे। नारद और बृहस्पति ने साहूकारी के जो नियम दिए हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में समाज में ऋणी व्यक्तियों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक हो गई थी। नंबर 2, लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी, इस काल में राजनीतिक अव्यवस्था होने के कारण व्यापारियों को अधिक संकट झेलने पड़ते थे, इसलिए साहूकारों ने ब्याज की दर बढ़ा दी। मिताक्षरा में स्पष्ट लिखा है कि व्यापारियों को घने जंगलों में होकर गुजरना पड़ता था और उन्हें समुद्र पर अनेक जोखिमें उठानी पड़ती थी। इन संकटों और जोखिमों के कारण साहूकार को अपने मूलधन के खोए जाने का डर रहता था, क्योंकि अनेक बार जहाज टूटने के कारण व्यापारियों की मृत्यु हो जाती थी या जंगली पशु या डाकू उन्हें मार देते थे। ऐसी दशा में व्यापारियों से अधिक ब्याज लेना साहूकार के लिए उचित था। इस काल के टीकाकारों ने सामान्यतः साहूकारों को अधिक सुविधाएं देने का प्रयत्न किया। प्रारंभ में स्मृतिकारों का मत था कि ऋण लेने वाले का पुत्र, पोता और परपोता ऋण चुकाने के लिए तभी उत्तरदायी थे जब उन्हें कुछ पैतृक संपत्ति मिली हो। इस काल में कुछ धर्मशास्त्रकारों ने पैतृक संपत्ति न मिलने पर भी उत्तराधिकारियों का पैतृक ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया। पुत्र को ब्याज सहित मूलधन, पोते को केवल मूलधन और पोता यदि चाहे तो पैतृक ऋण को ना चुकाए। इस काल में साहूकार ऋण ना चुकाने वाले कर्जदार को नदी किनारे ले जाकर गर्म रेत में हाथ पैर बांध कर डाल देते थे। दामोदर ने, जिसका संबंध गढ़वाल राज दरबार था, लिखा है कि अनेक साहूकार कर्जदार को काफी लंबे समय तक के लिए बंदी गृह में डाल देते थे और उसे बंदी गृह से तभी मुक्त करते थे जब पूरा भुगतान कर देता था। इस तथ्य की पुष्टि उपमिति भव प्रपंच कथा से भी होती है। लेख पद्धति में लिखा है कि यदि साहूकार ऋण चुकाने की निश्चित तारीख से पहले अपना धन वापस लेना चाहे तो वह रेहन रखने वाले व्यक्ति के पास भट्ट पुत्रों के साथ जा सकता था और अपना मूलधन और ब्याज वसूल कर सकता था। संभवतः भट्ट पुत्र को न्यायाधिकारी थे भट्ट पुत्र कोई न्यायाधिकारी थे जो साहूकार की इस कार्य में सहायता करते थे। भट्ट पुत्रों का सब खर्च कर्जदार को या उसके जमानतियों को देना होता था। ऋण के जमानती। प्राचीन भारत में ऋण के जमानती और ऋण देने के प्रति दृष्टिकोण। लेख पद्धति में ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण देने के लिए जमानती मांगना इस समय सामान्यतः प्रचलित था। यदि कर्जदार ऋण ना चुकाए तो वह धन जमानती को देना पड़ता था। यदि गिरवी रखी वस्तु प्राकृतिक विपत्ति से खराब हो जाए तो भी जमानती को ऋण चुकाना होता था। इकरारनामों का प्रारूप लेख पद्धति के दस्तावेजों से ऐसा अनुमान होता है कि इकरारनामों का प्रारूप इस प्रकार तैयार किया जाता था कि साहूकारों के विशेषाधिकारों पर जोर रहे, उनमें कर्जदार के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं होता था। कूटनीमत में एक ऐसे साहूकार का उल्लेख है जो इकरारनामे में जितना धन देता था उसका 10 गुना लिख देता था। इस प्रकार वह निर्धन कर्जदारों को धोखा दे देता था। लेख पद्धति में कर्जदार के कर्तव्यों पर बल दिया गया है। यदि कर्जदार समय पर ऋण का भुगतान ना करता तो साहूकार गिरवी रखी वस्तु को बेच सकता था। यदि गिरवी रखी हुई संपत्ति प्राकृतिक आपत्तियों से नष्ट हो जाती थी तो कर्जदार या उसके जमानती किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर सकते थे। लेख पद्धति में ऐसा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति 20 इकाई गेहूं उधार लेता है और 25 इकाई उस समय वापस देने का वचन देता है जब फसल गाही जाए। ऐसे इकरारनामे में कानूनन यह माना जाता था कि जब तक कर्जदार 50 इकाई गेहूं साहूकार को नहीं देगा वह अपना मकान जमीन या अन्य संपत्ति किसी को ना देगा। लेख पद्धति से यह स्पष्ट है कि साहूकार प्रयोग करने के अधिकार के साथ गिरवी रखे हुए मकान को किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए नहीं दे सकता था। मेघातिथि 825 से 900 ईस्वी ने भी इस मत की पुष्टि की है, परंतु कुल्लू का मत था कि साहूकार उस मकान या भूमि को दूसरे व्यक्ति को प्रयोग के लिए दे सकता था। इसका यह अर्थ है कि कुल्लू 1150 से 1300 ईस्वी के समय तक पूंजी की मांग इतनी बढ़ गई कि कर्ज लेने वालों को साहूकार को दूसरे व्यक्तियों को उस वस्तु के प्रयोग में देने का भी अधिकार देना पड़ा। इस काल में कुछ साहूकार धर्म शास्त्रों में लिखित ब्याज की दरों से अधिक ब्याज लेते थे। मेघातिथि ने लिखा है कि साहूकार बसंत में जो अनाज उधार देते थे उसका दुना किसान से पतझड़ में लेते थे। विवाद रत्नाकर में लिखा है कि यदि कर्जदार स्वयं अधिक ब्याज देना चाहे तो साहूकार दे सकता है, परंतु साहूकार कर्जदार को अधिक ब्याज देने के लिए विवश नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को धन की अधिक आवश्यकता होगी वह नियत ब्याज से अधिक ब्याज देने के लिए तैयार हो जाएगा। अल्बेरनी के वर्णन और लेख पद्धति के दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इस काल में ब्याज की दर सामान्यतः 2 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति मास थी, परंतु गणित सार संग्रह में ब्याज की दर से प्रतिशत के 13.2% तक की दी है। इसका यह अर्थ है कि साहूकार इन दरों के बीच में चाहे जो कुछ दर निश्चित करके कर्ज देते होंगे, परंतु सबसे अधिक उधार 2% से 6% है। इसका यह अर्थ है कि सामान्यतः ब्याज की दर 2% से 6% तक रही होगी। लेख पद्धति में कई प्रकार के ऋण के इकरारनामों का उल्लेख है। व्यवहार पत्र ऐसा इकरारनामा था जिसमें साहूकार कर्ज लेने की व्यक्तिगत जमानत लेकर कर्ज देता था। हस्ताक्षर रड़ी में कर्जदार के हस्ताक्षरों के साथ जमानतियों के भी हस्ताक्षर होते थे। सम्मुख हस्ताक्षरणी में कर्जों का उल्लेख होता था परंतु किसी प्रकार जमानत नहीं होती थी, परंतु गिरवी रखकर जो ऋण लेते थे उस प्रकार के इकरारनामे को अधिकृत वस्तुनामपुरी गृहित द्रव्य पत्र विधि कहा है। रेहन नामे को अधिपत्र कहते थे। दखली रेहन नामे को वृद्धि फल भोग पत्र कहा गया है। पूर्व मध्य काल में भी कुछ व्यक्ति ऐसे खर्चों के लिए धन उधार लेते थे जिनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता था। लोग कपड़ों अनाज सोना शराब और उपभोग की जाने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए भी कर्जा लेते थे। व्यापारी व्यापार से लाभ उठाने के लिए भी ऋण लेते थे। मेघातिथि और विज्ञानेश्वर 1070 से 1100 की टीकाओं में इस तथ्य की पुष्टि होती है। ऋण देने के प्रति दृष्टिकोण। इस काल में ब्याज पर रुपया उधार देना बुरा नहीं समझा जाता था। ब्राह्मण भी व्यापारियों को रुपया उधार देते थे। लक्ष्मीधर ने कहा है कि बृहस्पति के अनुसार उच्च जातियों के लिए ब्याज पर रुपया उधार देना जीवन निर्वाह का श्रेष्ठ साधन है। इस काल में बैंक प्रणाली का प्रारंभिक रूप मिलता है। कूटनीमत में लिखा है कि एक वैश्या की सेविका ने एक व्यापारी के पास एक मोती का हार जमा कर दिया और वह 30 केदार ले गई। दोबारा वह 30 केदार केसर कुछ कपूर चंदन और धूप ले गई। बाद में भी वह इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं उस व्यापारी से लेती रही। राजतरंगणी में लिखा है कि एक व्यक्ति ने एक व्यापारी के पास 1,00,000 दिनार जमा कराए थे। वह 20 से 30 वर्ष तक बराबर अपने खर्च के लिए उस व्यापारी से धन लेता रहा, परंतु इन दोनों व्यक्तियों को व्यापारियों से अपने धन पर कोई ब्याज नहीं मिलता था। इस काल में भी कुछ व्यक्ति श्रेणियों के पास अपना धन जमा कराते थे और श्रेणियां उनको नियमित रूप से ब्याज देती थी। 912 ईस्वी के सियदोनी अभिलेख में लिखा है कि नागाख नाम के व्यापारी ने शराब बनाने वाले के पास 1,350 वराह द्रम जमा किए थे, परंतु इस प्रकार के उदाहरण इस काल में बहुत कम है, क्योंकि राजनीतिक शांति और सुव्यवस्था नहीं थी, इसलिए श्रेणियों की साख पहले जैसी नहीं थी। चहमान अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस काल में मंदिर धन जमा करते थे और उन पर ब्याज देते थे। संभवतः इसका कारण यह था कि मंदिर पवित्र संस्था होने के कारण श्रेणियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित संस्था समझी जाती थी। इस काल में धन संचय करने की प्रवृत्ति समाज में बहुतायत से विद्यमान थी। मांसोल्लास में लिखा है कि राजा को भिन्न संकेतों द्वारा जखीरों का पता लगाना चाहिए। इस काल में असुरक्षा होने के कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे का धन अमानत के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं होता था, इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने साहूकारों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाए। हरदत्त ने लिखा है कि यदि किसी के पिता ने किसी की जमानत का दुरुपयोग किया हो तो पुत्र उसके देने का उत्तरदायी नहीं होता, वह केवल उसी दशा में देनदार होगा जबकि उसने स्वयं भी उस अमानत का दुरुपयोग किया हो। इस काल में अमानत के लिए 3 शब्द प्रयुक्त किए हैं, न्याय, निक्षेप और उपनिधि। विज्ञानेश्वर ने निक्षेप ऐसी अमानत के लिए लिखा है जो न्यासी के सामने गिनी जाए हो, न्यास को अमानत परिवार के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में रखी गई हो, और उपनिधि ऐसी अमानत जिस पर बिना गिने अमानत रखने वाले के सामने मुहर लगा दी गई हो। परंतु सभी विधि वेताओं ने इन तीनों शब्दों का अर्थ नहीं लगाया। जैसे कि अभिधान रत्नमाला में निक्षेप और उपनिधि को पर्यायवाची शब्द कहा गया है, वैजयंती में नाश, उपनिधि, अस्थाप्य और निक्षेप को पर्यायवाची शब्द कहा है। इस काल के साहित्य से ज्ञात होता है कि अनेक व्यापारी अमानत रखते थे। नैषधीय चारित्र में निक्षेप वाणिकों का उल्लेख है। इसी प्रकार क्षेमेंद्र और कलहड़ ने न्यास रखने वाले ऐसे व्यापारियों का उल्लेख किया है जो धरोहर रखने वाले को अनेक प्रकार से धोखा देते थे और बड़े पुण्यात्मा होने का ढंग रखते थे।